विष्णुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नये मां शरणान्तिके। अङ्गश्यामलिं शटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जड्डञ्जागुदरोचिसं विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं अभी तक हम लोगों की परिक्रमा गुरु गौरांग और गिरिराज गोवर्धन की कृपा से अच्छी तरह से चल रहा है। इसमें विभिन्न वक्ताओं के विभिन्न विषय भी बोले जा रहे हैं। अभी आप लोग जानते हैं कि नारद जी के कृपा से व्यास जी ने समाधि में भगवान की लीलाओं का दर्शन किया। जन्म से लेकर और द्वारका लीला इत्यादि सभी को देखा और उसको समाधि के भाषा को जो देखा उसमें लिखा, वही श्रीमद् भागवत है। उसमें विशेष करके हमारे व्यासदेव जी ने ब्रह्मसूत्र लिखा, सर्व श्रुतियों के निखिल श्रुतियों के सार ब्रह्मसूत्र को प्रकाश किया और उसी के अप्राकृत भाष्य के रूप में श्रीमद् भागवत की रचना की। उसमें कृष्ण लीला कथाओं का आद्योपांत वर्णन किया। इसके पहले वो सुखी नहीं थे। कृष्ण लीलाओं को प्राय सभी लोग कुछ न कुछ जानते हैं, किंतु कृष्ण लीलाओं में प्रवेश कैसे होगा, उसकी अनुभूति कैसे होगी, इसलिए श्री कृष्ण ने अपने स्वयं मुख से उद्धव जी को एकादश स्कंध में सब बतलाया, जिसको उद्धव संवाद कहते हैं। उद्धव संदेश, गोपियों को उद्धव ने संदेश दिया। यहाँ पर उद्धव संवाद में कृष्ण ने ही इन लीलाओं में प्रवेश कैसे आ रहा है, उसकी अनुभूति कैसे होगी। इसमें लीलाओं के बाद में, वार्ता लीलाओं के बाद में कृष्ण ने सोचा कि त्वा दैत्य वधम कृष्ण सरामो जदुर विभोर वृत भूभार हरण युद्धावास वरिष्ठम जनयन कलिम। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे राजन, जादों से परिवृत्त होकर के घीर करके भगवान कृष्ण बलदेव जी के साथ में दैत्य गणों को संहार कर कुरु पांडवों के मध्य में प्रबल करा कराया। पहले ब्रज में रहते समय अघासुर बकासुर पूतना इत्यादि
तृणावर्त
इत्यादि सब असुरों का संहार किया, कुछ भार हरण हुआ। मथुरा में आए, कंस इत्यादि को, उसके परिकरों को, चारण मुष्ट इत्यादि को मार करके कंस को भी क्षण मात्र में बड़ी आसानी से उनका वध कर डाला। जरासंध 17 बार कितनी अक्षौहिणी सेनाओं के साथ में आया, बलदेव जी उसको मार ही जान से मार रहे थे, किंतु कृष्ण ने रोक दिया, अभी भूभार हरण नहीं हुआ है, अभी 17 बार आएगा और 17 बार में 7 अक्षौहिणी सेनाओं को लेकर के आएगा, उसको मार करके कुछ भार भूभार हरण होगा। इसके बाद में काल यमन को, दंत वक्र को आदि सब, अंत में शिशुपाल का वध किया, पौंड्रिक वासुदेव का भी, जो चतुर्भुज लगा रखा था अपने को वासुदेव कहता था। इसके बाद में कुरु पांडवों में कलह लगा दिया, बिना उनकी प्रेरणा का द्रौपदी का अपमान नहीं होता। युद्ध जितने हुए हैं, महायुद्ध सब स्त्रियों के लिए ही प्राय हुए हैं। इतना बड़ा भारी महाभारत द्रौपदी को कलंकित करने की चेष्टा कर गई और भीम ने, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की सबको मारे। इस प्रकार से क्रोध जला करके और दुर्योधन में उत्तेजना जला कर और दोनों सेनाओं को मत कर केवल पांडवों की तरफ में 5-6 आदमी कृष्ण समेत 5 पांडव और उधर भी दो
अश्वत्थामा कृतवर्मा
द्रोणाचार्य के पुत्र
वो कृपाचार्य
कृतवर्मा और बाकी सब फंस कर ईश्वर के बाद में ब्रह्मा जी, देवताओं के शंकर इत्यादि साथ में आए, प्रभो सब काम हो गया है, जिसलिए आपको हम लोगों ने प्रार्थना की, पृथ्वी अब प्रसन्न है, उनका भूभारण हो गया है, अब हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप अपने स्वधाम ब्रज वृंदावन में उपस्थित हो जाए। कृष्ण का आज अभी नहीं कुछ बाकी है, हमारे बाहुबल से रक्षित जादव लोग विश्व के लिए क्या देवताओं के लिए भी अजेय हैं? देवता लोग भी किसी प्रकार से इनको जीत नहीं सकते। प्रद्युम्न अनुरुद्ध भगवान के अंश हैं। इसी तरह से सात्यकी इत्यादि हैं। कृष्ण के जितने पुत्र थे वो वैसे ही बलवान हैं। ये रहेंगे तो उत्पात मचाएंगे। ब्रह्मा जी से कहा, किंतु इनके बातों में भी कुछ रहस्य है, वो पीछे मालूम होगा। उन्होंने ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी को कहा, अच्छा तो मैं जा रहा हूं, आदेश कीजिए, हम लोग आपके परलोक वहां गमन की प्रतीक्षा करेंगे। कृष्ण ने अब क्या किया? ऐसे दुर्दांत देवताओं के लिए भी अपराजय, जदुलोगों को अपने लोक में ले जाने के लिए लीला की रचना की। उद्देश्य क्या था? हम अपने इन लोगों के साथ में अपने परलोक में जाएंगे। भगवान के अंश प्रद्युम्न क्या इनका संहार हो सकता है? अनुरुद्ध का संहार हो सकता है? बलदेव जी को कोई मार सकता है? नहीं। अद्भुत, वो भगवान के अंश थे और भी ऐसे ही जदुवंशी थे जो कृष्ण के परिकर थे, उनका ध्वंस कैसे होगा? इसलिए ध्वंस नहीं, इस लीला के माध्यम से अपने समस्त परिकरों को लेकर के जो बैकुंठ के पार्षद थे उनको बैकुंठ के पार्षद में ले गए, जो स्वर्ग के देवता के अंश थे उनको स्वर्ग में पहुंचा दिया, और जो लोग गोलोक वृंदावन के परिकर थे उन लोगों को गोलोक वृंदावन में सबको लेकर के चले गए।
गोलोक वृंदावन वाले थे क्या?
मुझे द्वारका में कोई गोलोक वृंदावन वाले कोई थे उसमें?
गोलोक वृंदावन गोपियां इत्यादि नहीं थी?
द्वारका में
सिद्धाम सुबा इत्यादि,
वो तो द्वारका में है, मूसल लीला है ये, उसमें तो गोलोक वृंदावन कौन आएंगे उधर?
हाँ, तो वहां पर कृष्ण के अंश से जो भी हो उसको लेकर।
रोहिणी मैया तो थी गोलोक वृंदावन? रोहिणी मैया तो गोलोक वृंदावन के थी?
रोहिणी जी थी। तो इस प्रकार से कृष्ण ने यह बड़ी रहस्यपूर्ण लीला की। उन्होंने क्या किया? सोचा, या सोच करके ऋषियों में प्रेरणा दी, तुम लोग यज्ञ करो, और इधर में उन्होंने प्रेरणा दी, सांब को स्त्री बना करके ले जाओ, पेट पर ऊंचा बना दो, पूछो जी इसके गर्भ में लड़का होगा बेटा की बेटी, ये बड़ी लजीली है, सांप भी वैसे इतने सुंदर थे जो स्त्री के रूप में सजा देने से उनको कोई भी पहचान नहीं सकता। ये लोग जहां वो यज्ञ कर रहे थे वहां पर पहुंचे, सांप इत्यादि जदुवंश के जितने राजकुमार थे, और वहां पहुंचकर सांप को स्त्री बना करके जिसमें दुर्वासा जैसे महाविक्रमी सब ऋषि नारद इत्यादि सब थे, वशिष्ठ थे, देवल अशिति सब बड़े बड़े ऋषि,
आदित्य गौतम,
उसी समय में पूछा इसको बेटा होगा या बेटी, एक बार नहीं दो बार दस बार कहा वो चुप रहे। जब बार बार पूछने लगे तो उन्होंने कहा इसके गर्भ से न बेटा होगा न बेटी होगी, इसके गर्भ से क्या होगा
मूसल,
और उससे जदुवंश का ध्वंस हो जाएगा। यह सुन करके डर गए वे लोग, और थोड़ी दूर जा करके पेट उसका खोला तो देखा जैसे उस तवा बांध रखा था उसके नीचे से एक मूसल निकला जिसके अंतिम भाग में लोहे का लगाया हुआ था गोल और बाकी काठ था। देख करके उग्रसेन के यहां गए, कृष्ण के पास नहीं गए। उग्रसेन भी डर गए और उसको मूसल को चूर्ण कर दिया, जला करके खाक कर दिया लकड़ी वाला, और नीचे का जो लोहे का था उसको रगड़ते रगड़ते करते करके पूर्ण चूर्ण कर दिया, और जो बाकी रह गया उसको रगड़ नहीं सके हाथ में नहीं आया, बड़ा नुकीला हो गया, और लेकर के समुद्र में फेंक दिया। फेंकते ही समुद्र को तो जानते हैं जो वापिस नहीं लेता फिर लौटा देता, जो चूड़ था उसको तो समुद्र के किनारे में लगा दिया भाग, उससे एरका का बन हो गया, बड़ी धार उसमें, और जो लोहे वाला जो बाकी रह गया था उसको एक मछली ने निगल गया। मल्लाहों ने जो मारते हैं मछली वाले, उन लोगों ने मछली को पकड़ा उसके पेट से वो निकला, उसने अपने नुकीले बाण के ऊपर में लगा दी। इसके बाद में पीछे हम बतलाएंगे, यू सो ट्रांसलेट।
By the mercy of the great Saint Narad Muni, Vyasadev saw in his trance of Samadhi all the pastimes of Sri Krishna from his birth up until the completion of his pastimes in Dwarka. What he saw in his Samadhi, he wrote. Therefore, that Samadhi Bhasa took the form of the Srimad Bhagavatam. Especially Vyas, he gave the essence of all the scriptures in the form of the Brahma Sutra or the Vedanta Sutra, of which the natural commentary is the Srimad Bhagavatam itself. We know that even though he compiled everything, he was not satisfied until he completed the Srimad Bhagavatam. Everyone, they know something about the pastimes of Krishna. But how to actually enter those pastimes, how to realize them, the answer to that was spoken by Krishna himself in his instructions to Uddhav, that is the 11th canto of Bhagavatam, known as the Uddhav Samvada. Therefore, after the completion of his pastimes in Dwarka, Sri Krishna was thinking, as spoken by Parikshit Sukadeva Goswami, "Hey Parikshit Ji, surrounded by the Vrishnis and the Pandavas, with their assistance, Krishna killed many, many demons. In Vrindavan, he killed demons such as Agasur, Bakasur, Bhutada,
Bhagavat Kotha
Liksha, etc.
Bhagavat Kon Jaga?
44
पूर्वार्ध 44 12
फिनिश का
ताले तो शीघ्र ही 47 ऐसे
जाए
सब
इकतालीस
से टाइप होते
इकतालीस
Krishna Balaram destroyed the whole army, but when Balaram went to kill Jarasandha, Sri Krishna stopped him knowingly. Why? Oh, no need to kill him. He will go back and bring another army next year. Thus, 17 times he came and his whole army was finished. Not only that, Sri Krishna killed big, big demons like Kalyavan, Dandavakra, Shushupala, and Pondak Vasudev, who took form, who assumed a fake four-handed form. Not only that, Sri Krishna himself also deliberately inspired friction between the Kuru and the Pandav dynasties. Otherwise, without the direct inspiration of Krishna, how could the Kurus try to disrespect and disrobe Draupadi? Krishna was the cause of that. Therefore, Krishna himself was the cause of the Mahabharata war. He inspired Krishna and he inspired Arjuna and Bhima to take vows, I must finish the Kurus. Thus, by the inspiration of Krishna, almost the entire army of the Kurus, except for a few guys like Aswatthama, Kripacharya and Vrindavarma, and the whole entire army of the Pandavas, except for a few persons, were all destroyed. Thus, at the end of the pastimes of Dwarka, Lord Brahma and the demigods, they came and prayed to Krishna. O Sri Krishna, you have mercifully performed the task for which we pray to you, to remove the burden of the earth. Therefore, please return to your abode with your eternal associates. Then Sri Krishna said, I cannot go now. There's a few things that I have to do. Krishna was thinking, my personal associates are still there, and they are very powerful. They cannot be killed, even by the demigods. Especially Pradyumna, Aniruddha, and Balaram. They are incarnations of Bhagavan. And the sons of Sri Krishna himself, they are not less than him, as well as great personalities like Satyaki. Therefore, Krishna did not reveal this, he kept it secret, and it was revealed afterwards. Therefore, Krishna ordered Brahma, don't worry, I have a few things left to do, I will come soon. Therefore, Krishna arranged this pastime, which we will hear of, in order to take all his associates back to their abodes. Can anyone else kill personalities like Pradyumna, Aniruddha, or Baladev, or even the associates of Krishna?
Nobody can kill.
Therefore, by this pastime at Mosa Lila, Krishna arranged that all the eternal associates of Vaikuntha would go back to Vaikuntha. All the demigods who had taken birth in the dynasties of the Vrishnis to assist Krishna's pastimes would go back to the heavenly planets, and those eternal associates like Rohini Devi would go back to Goloka Vrindavan. Therefore, Krishna arranged his pastime. Krishna ordered all the rishis perform yajna. Thus, great personalities like the very fiery Durvasa, Vashishtha Rishi, Nara, Asit, Devala, all were performing yajna and gathered in one place. At that time, Samba, who is very beautiful and with a little bit of lipstick and kajal, would become like a woman herself, very attractive. Therefore, they dressed him in a sari and keeping some cloth as if he was pregnant, they came before the rishis and asked, O sadhus, you know everything, past, present, future. Will this doe-eyed lady give birth to a boy or to a girl? Maybe 10 or 15 times they asked this question, but the sadhus remained silent. Then they became angry. You think we are fools? She will not give birth to a boy or to a girl. Rather, she will give birth to an iron club, which will be the cause of the destruction of your dynasty. Thus, lo and behold, when they took the cloth off Samba, there was an iron club with a wooden handle. When Ugrasen saw the club, he became afraid. He did not tell Krishna, but he ordered the club to be destroyed. Therefore, the wood was burnt. The boys did not go to Krishna, they went to Ugrasen. Therefore, Ugrasen, he began shaking, destroy the club. Therefore, the wooden handle was burnt to ashes, and the iron section, the top section of the muscle, the club, was ground into a powder. But there was one piece which could not be ground. They threw it in the ocean. What goes in the ocean must come back one day. Therefore, all the little bits of powdered iron that was washed onto the beach, and it became a very hard and strong form of cane. And the one piece which could not be destroyed, that was caught, swallowed by one fish, and one fisherman caught it. When he cut open the fish, he found that piece of iron. What happened to him later?